أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيام ماہ مبارک، اگر کوئی چیز کی طرف ہماری توجہ مبذول نہیں کراتا تو کم از کم کس چیز کی طرف ضرور کراتا ہے کہ کوئی ایسی حقیقت ہے کہ جو بھوک کے ذریعے سے اور پیاس کے ذریعے سے انسان کے ایمان میں حاصل ہو سکتی ہے، اگر ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور یا شاید وہ دینوں کے ماننے ادیان کے ماننے والے ہیں کہ جو دین میں روزے کا تصور رکھتے ہیں، فاسٹنگ کا تصور رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو انسان کے لیے بھوک اور پیاس سے محرومیت کے نتیجے میں اس کے مرتبہ ایمانی کو ایک دوسرے درجے تک پہنچا سکتے ہیں. اس لیے یہ بات کو قرآن نے بھی جب پیش کیا کہ جیسے کہ گزشتہ قوموں پر بھی روزہ لکھ دیا گیا تھا، اسی طریقے سے تم پر بھی آج واجب کیا جا رہا ہے. کتبہ علی الذین من قبلکم کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جہاں کے اوپر آپ جب غذا سے اور دوسری چیزوں سے، پانی سے اور دوسری چیزیں جو عام طور پر حلال ہوتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو جب دور کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، قربت خدا کے لیے، تو یہ مہلت جو آپ کو ملتی ہے صبح سے لے کے شام تک، ابتداء فجر سے وقت مغرب تک، یہ آپ کی روح کو ایک الگ مرحلے پر لے آتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو آخری 10 دن ہیں ان کا جو زیادہ توجہ کے ساتھ رمضان میں منایا جانا تاکید روایتوں میں بھی ہے اور آیات قرآنی میں بھی ہے، وہ اسی عنوان سے ہے کہ ایک مرحلے کو آپ جب طے کر لیتے ہیں، جگہ تک پہنچ جاتے ہیں 20 روزوں کے لگ بھگ بعد، تو اس کے بعد کا مرحلہ وہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کی تشبیہ 1000 مہینوں کے برابر کہہ کر دی گئی ہے. شب قدر کی جو اہمیت ہے وہ 1000 مہینوں کی بات کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے اوپر جیسا انسان کا بدن، انسان کا بدن کچھ قوانین پر چلتا، آپ اگر اس بدن کو ان قوانین پر چلائیں تو اس کی گروتھ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کی گروتھ کا ایک سلسلہ ہوتا. آپ یہ غذا کھائیں، غلط غذا نہ کھائیں، ایکسرسائز اس کی حد تک کریں، تو آپ کی باڈی ایک خاص قسم کا شیپ لے لے گی. کوئی دوڑنے والا ہے اس کی ایکسرسائز الگ ہوتی ہے، کوئی فٹ بال کھیلنے والا ہوتا ہے اس کی ایکسرسائز الگ ہوتی ہے، کوئی کرکٹ کھیلنے والا ہوتا ہے اس کی ایکسرسائز الگ ہوتی ہے، ہر کی اپنی اپنی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ خاص قسم کی غذا اور خاص قسم کی ایکسرسائز سے باڈی کو ایک خاص شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے. یہ ہو گیا ہمارا مادی اسٹرکچر، مادی فارم میں، میٹیریل فارم میں ہمارا یہ اسٹرکچر. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک روحی سٹرکچر بھی ہے. ہم خالی مادہ نہیں ہیں. بیل کو آپ خالی کھانا کھلاتے رہیے یا منڈی میں بند کر اس کو چلائیے یا ہل جوتنے کے لیے اس کو کام میں لائیے، اس کی جو دنیا کی بدنی جو قوتیں ہیں وہ وہی حساب سے رہیں گی. جتنا کھائے گا اتنی طاقت آئے گی، اس حساب سے وہ کام کرے گا. اس کی روحی ارتقاء کے لیے، اس کی ایمانی ارتقاء کے لیے کوئی کام کیا نہیں جا سکتا. اس کو کھلایا جا سکتا ہے، اس سے کام لیا جا سکتا ہے، گائے کو کھلایا جا سکتا ہے، اس سے دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ سب اپنی جگہ، یہ ہم آپ ہی آ کے رہ گئے ہیں کہ جس کے بارے میں ایک دوسرا چیپٹر کھولا گیا ہے کہ جہاں کے اوپر ہماری جس طریقے سے بدنی گروتھ ہے تو بدن کو محروم کیا جا رہا ہے، روح کو بلند کیا جا رہا ہے. یہ جو ریلیشن شپ روح کی اور بدن کی ہے، یہ اسلام نے اس لمبی مدت کے لیے، 1 مہینے کے لیے اس بنیاد پر تاکید کی ہے کہ بدن کی قوت کو کم کرو، ایمانی قوت کو زیادہ کرنے کا طریقہ ہم نے بتایا. یہ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو شاید ہم نے جو سوالات سے گفتگو شروع کی ہے ان سوالات میں سے اکثر سوالات کا حل مل جائے گا. پہلی ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اسی فطرت پر خلق کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم نے تمام انسان کو اللہ کی فطرت پر، اللہ کے طریقے پر خلق کیا ہے. جب ہر انسان کوئی ذات پاک، درجہ، گورا، کالا، کسی کی گفتگو اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں رہا ہے، صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی فطرت پر تمام انسانوں کو بنایا. جب انسان تمام اس کی فطرت پر بنے ہیں تو ان کے گروتھ کا بھی پروسیس ایک جیسا ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جیسا گزشتہ قوموں کو کہا گیا تھا کہ روزہ رکھو، اسی طریقے سے تم کو بھی کہا جا رہا ہے، تاکہ جس طریقے سے بدن کا اہتمام کرتے ہو اس طریقے سے اس مہینے میں کم از کم روح کا اہتمام کرو، بدن کے اہتمام کو سیکنڈ لیول پر ڈال دو. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کیونکہ الٹی ہوئی ہے، رمضان بھی اسی طریقے سے الٹا ہونے لگا کہ ये रूह का तो हिसाब है ही नहीं, क्योंकि रूह है किसकी? रूह है किसकी? जब तक हमको अपनी रूह का एहसास होगा नहीं, हम उसका इलाज मुआवजा करने वाले भी नहीं है। हमने कहा कि हमको अल्लाह ने एक नाजुक बैगी जैसे बना दिया, गजा उतनी खाते हैं, काम अगर अलग करते हैं, जानवरों जैसा खाते हैं। जबकि कुरान की आयत के मुताबिक अल्लज़ीना कफरू याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, वो लोग जो कुफर इख्तियार करते हैं वो ऐसे खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं, चौपाए खाते हैं। तो हमने ये कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना तो अल्लाह ने साबित कर दिया कि हम चौपायों जैसा खा तो सकते हैं। आयत से ये जरूर नतीजा निकल गया कि हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह चौपायों के जैसी खाने की कुदरत तो बराबर है, ठीक है। और अल्लाह ने शुरू से कह दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, तो रहमतों का जब सिलसिला है तो यकीनन वो खाने में भी आ गया है। तो अल्लाह की रहमत से हमको खाने को मिला है, और अल्लाह ने खुद कहा है कि तुम अगर चाहो तो बिल्कुल जानवरों जैसा खा सकते हो। तो ये दो चीजें, रहमान भी है और रहीम इसलिए है कि खाने के बाद के नतीजे वो खुद देखेगा। रहमान इसलिए कि हमको खाना खिलाएगा, रहीम इसलिए है कि उसके जो गलत नतीजे निकलेंगे उसका भी वो गुफरान के जरिए से, बख्शाइश के जरिए से उसका भी लिहाज रख लेगा। तो अब रह क्या गया, चाहे वो रमजान हो या कोई और चीज, खाने के लिए जरूर इंतजाम कर लेना चाहिए, क्योंकि रूह है या नहीं है उसको मालूम है। उसने फूका था कि नफख तो फी है मिन रूही, मैं जब उसमें अपनी रूह फूक दूंगा तो तुम उसके सामने सजदारेज हो जाना। ये फरिश्तों से दरखास्त थी अल्लाह की, ये हुक्म था अल्लाह का कि जब मैं उसमें रूह फूकूंगा, हमको क्या मालूम हमें कब रूह फूकी गई, हमको क्या मालूम, वो तो फरिश्तों को भी बराबर मालूम नहीं हुआ, उनको भी डाउट होने लगा कि भैया फूकने के बाद झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए, कुछ सवाल कुछ जवाब। हम तो जो जिसके में रूह फूकी गई थी हमको तो वो एहसास भी नहीं हुआ, और वो एहसास नहीं होने की पहली दलील हमने खुदा के हुक्म की मुखालफत करते हुए शैतान की बात सुनते हुए उस दरख्त से कुर्बत हम करीब हो गए कि जिससे अल्लाह ने रोक दिया था। उसका मतलब यह है कि हमने कभी भी इब्तिदा से ही रूह को दर्द करने और उसका एहसास करने में कासिर रहे, और शैतान की बात हमको बात अल्लाह की बात से हमेशा ज्यादा समझ में आई। तो अगर हमको ये मौका काफिरों जैसे खाने का मिल रहा हो तो वैसे मौके को छोड़ देना ये ऐने कुफ्रान नेमत होगा, और रहा कि रूह की परवाह अल्लाह ताला को खुद को करनी है हमको करनी नहीं है, बाल बड़ी मंतिकी है। आयात कुरानी से हमने अपने रमजान के खाने का इंतजाम तो कर दिया, अब क्या रह गया, वो रूह कि जिसके बारे में अल्लाह ने हमारे शरफ को उसी से जोड़ा, इंसान को बनाया, रूह फूकने से पहले सजदे का दरखास्त नहीं की, हुक्म नहीं दिया, रूह फूकने के बाद कहा कि उसके बाद खिलकत इंसानी की भी जो आयतें कुरानी हमको मिलती हैं, मुख्तलिफ हालात में इंसानी पैकर को बदलते हुए पेश करता है और उसके बाद कहता है कि फिर रूह फूकी गई और उसको हमने और ही खिलकत बना दिया, तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, और बाबरकत है वो अल्लाह की जात जो बेहतरीन अमल करने वाला है। तो ये सब चीजें, एक तरफ पेट की भूख और पेट की ख्वाहिश, जबान का मजा एक तरफ, आकर आज के दौर में अगर हम देखें तो रमजान अपनी दूसरी कैफियत के लिए कम और अपनी पहली कैफियत के लिए ज्यादा मालूम है। पेट भरना हमको सबको आता है, भूख को आगे लेकर जाना हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि पेट भरने वाली कैफियत जानवरों जैसी। कौन सा जानवर आप बता दीजिए कि जिसको आपको सिखाना पड़ता है, बच्चा पैदा होता है मां की छाती से दूध पीता है या नहीं पीता है? हर वो जानवर जिसको अल्लाह ने ताकत दी अपनी गजा की खुद खोज करने की कोशिश करता है या नहीं करता है, चाहे वो हिस्स के साथ और इल्म के साथ हो या फितरत की बुनियाद पर है या नहीं है। लेकिन हर जब इंसान में गजा खाने और गजा तलब करने की ख्वाहिश और जायका लेने की ख्वाहिश होती है, तो क्या हर इंसान में अल्लाह की तरफ रगबत करने की भी वैसी कैफियत हो सकती है या वैसी हो नहीं सकती? पूरी पूरी गुफ्तगु इसी के अतराफ कि इंसान अपने पैकरे मादी से हटकर कुछ और भी अपने आप को समझता है या नहीं समझता है, पहला सवाल। दूसरा, कितनी देर तक समझ सकता है, तवज्जो का मोहताज। एक, पहले कि मैं किस हद तक अपने आप को बदनी फकत समझूं या नहीं तो रूही भी हूं समझूं, और फिर कब तक मैं इस कैफियत को अपने लिए एक दायमी कैफियत बनाने के काबिल समझता हूं या नहीं समझता हूं। कुरान की आयत है जहां पर अल्लाह ताला फरमाता है ये लोग अल्लाह की इबादत बिल्कुल किनारे पर करते हैं, बिल्कुल किनारे पर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से कबड्डी खेल रहे हैं यूं जहां तक गए फिर वापस आकर अपनी कैफियत में आ गए, ताकि कोई मादी नुकसान के बगैर अगर अल्लाह की इबादत हो जाए, अगर कोई मादी नुकसान के बगैर अल्लाह की इबादत हो जाए तो ये कैसी जबरदस्त छीन छानी हो जाएगी। रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत ना गई, दुनिया में जो चाहा कर लिया, अल्लाह से भी हाय बाय का रिश्ता बाकी रहा। कल ऐसा ना हो कि कियामत के दिन अगर बात बोले कि भाई अल्लाह ताला के सामने जाना है तो बोले हम तो पहले से जानते हैं, मुलाकात है, बातचीत हो चुकी है, कोई वो कैसे, तो बोले पेट भर के खाने के बाद जब डकार नहीं आती तो अल्लाह को पुकार लेते, आ जाती तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते, क्योंकि अगर डकार नहीं आती तो कैफियत ऐसी होती थी कि ऊपर का दम ऊपर और नीचे का नीचे, तो अल्लाह याद आ जाता था तो अल्लाह को पुकार लेते, डकार आ भी जाती थी तब भी अल्लाह को पुकारते थे अल्हम्दुलिल्लाह कहते, तो अल्लाह का हमारा रिश्ता हमारे पेट से जुड़ा रहा, हमने कभी वो रिश्ता टूटने नहीं दिया। अब भी अब अल्लाह जब आएगा तो कुछ अच्छा खिलाने के लिए बुला रहा होगा। तो इंसान का जहन जो है होते 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 इतना मादी होने लगता है कि वो हमेशा ये समझता है हर चीज मादे से जुड़ी, मेरी कामयाबी मादे से जुड़ी, मेरी शिकस्त मेरे मादे से, मेरी इज्जत मेरे मादे से। एक एक आयत आप कुरान की लेते जाइए इसको रिफ्यूट करती है, इसको का इनकार करती है। मादा कोई चीज ही नहीं, इतनी बड़ी कायनात बनाने वाले के वास्ते हम जैसे इंसान का पेट भरना या नहीं भरना क्या माना रखता है, या नहीं है? हम जैसे का पेट भरना या नहीं भरना क्या माना रखता है? हजारों लाखों पैदा होते हैं और हजारों लाखों रोज मरते हैं, फिर वो क्या चीज थी जिसको लिए हमको उसने खत्म किया, फिर वो क्या चीज थी जिसके लिए हमको खत्म किया, वो क्या चीज थी जिसके लिए उसने अंबिया को भेजा, वो क्या चीज थी और वो चीज क्या हमारे में है या नहीं है? बहस फकत अल्लाह को पुकारने और अल्लाह तक की इब्तदाई आशनाई तक बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से मैंने कहा कि हम अगर कोई एक्सरसाइज करने वाले को देखते हैं कि जिस भी फील्ड का वो माहिर है उसमें वो उस शक्ल की एक्सरसाइज करेगा और उसके मुताबिक उसकी बदन की ग्रोथ होगी और उसी हिसाब से उसके पास वो स्टेमिना आ जाएगा। ये एक 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 छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज उसमें असर रखती है, थोड़ी गजा हो जाए उसके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगा, थोड़ी कम एक्सरसाइज हो जाएगा तो भी का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये चीज जिसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, सबब और मुसब्बब, ये मादी दुनिया में दिन रात हम देखते हैं और उस पर यकीन रखते हैं, रखते नहीं रखते। अगर मैं सीढ़ियां उतर रहा हूं और मैं कहूं मैं सीढ़ी उतर रहा था लेकिन मैं सेकंड फ्लोर पहुंच गया, आप क्या कहेंगे? इलाज की जरूरत बहुत ज्यादा है, अब कभी सेकंड फ्लोर पर मत जाइए, सीढ़ियां उतरते वक्त जमीन पे आएंगे आप, अगर आप ठीक हो गए आपका दिमाग, अगर नहीं ठीक हुआ तो थर्ड फ्लोर तक पहुंच जाएंगे और हो सकता है अल्लाह चाहे तो और ऊपर। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपको इस बात का यकीन है कि आप अगर सीढ़ी नीचे उतर रहे थे तो आप ऊपर पहुंचने वाले नहीं है, कबूल? ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, आगे चलते जा रहे हैं पीछे पहुंच गए। ये जवानी में इब्तदाई जवानी में हो सकता है घर को अपने जाना चाह रहे थे कहीं और पहुंच गए, कबूल? क्या गलत बोल दिया हूं? आगे आगे बढ़ रहे थे जा रहे थे अपने घर को पहुंच गए किसी और जगह पर, इब्तदाई जवानी तक कबूल, उसके बाद अभी तो कबूल नहीं है, अल्लाह ने भी कुछ कुछ जगहों पर छूट दे दी है, बाकी जगह तो कानून काम करेंगे, है या नहीं है? हर वो चीज जो आप चाह रहे हैं, जेब में आप अपने कुछ चीज रखना चाह रहे हैं दूसरे के जेब में हाथ चला गया, हो सकता है? नहीं हो सकता, मगर देखिए कोई आदमी बिल्कुल ही खरीद खड़ा हो और आप डालने की कोशिश कर रहे हो गलती से उसका जेब भी वहीं पर, वरना कोई पिकपॉकेट को आप ये नहीं कहेंगे कि वो कहेंगे कि मैं अपने जेब में डाल रहा था आपके जेब में चले गया, मानेंगे नहीं मानेंगे? मस्जिद में अगर भी होगा तो वहीं मानेंगे क्योंकि ज्यादातर वहां पर ही चोरी होती है। तो आप जब हर चीज का एक कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं, एक सबब और उसका मुसबब, एक इल्लत उसका नतीजा, तो जब ये सब दुनिया के मार्ग की चीजों में सीधे पैर की चप्पल बाएं पैर में गलती से पहन सकते हैं, तवज्जो के साथ नहीं पहनेंगे, कबूल? आइए रूह के ऊपर, रूह पर भी यही किस्म की चीज कारामद है, यही तरीका रूह पर भी लागू होता है। रूह की आप एक्सरसाइज छोड़ दिए, रूह लिजली हो जाएगी। सही एक्सरसाइज कीजिए तरोताजा हो जाएगी। एक एक्सरसाइज के कुछ जो तरीके हैं उसके नतायज भी बराबर मुरतब होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ताकतवर रूह एक कमजोर रूह बन जाए और एक कमजोर रूह बगैर कोई सबब के एक ताकतवर रूह बन जाए, क्योंकि हमने हाथ पर तावीज बांध ली। तावीज आमतौर पर उनको मानी जाती है कि जिसकी रूह खुद ग्रो नहीं हो सकती, इसलिए जो है हमको देखा जाता है कि कुछ जगह इस किस्म के लोगों को तावीज दी गई कि जिनके पास रूह ही नहीं थी, इनके पास रूह की का तसव्वुर ही नहीं था। छोटा बच्चा, उसको अभी रूह का अंदाजा नहीं है, उसको आप तावीज बांध सकते। मगर शऊर रखने वाले को अगर वो रूह के मुकाबले में अमल कर रहा है, कोई तावीज बांध नहीं, कोई कुछ असर होने वाला नहीं है। यहां पर असर होने की बात है जब आपको शऊर आ गया है, वही वाली बात है, नीचे उतर रहा हूं तो ऊपर पहुंचने वाला नहीं। यही चीजें हैं जिसकी तरफ रमजान, यही चीजें हैं जिसकी तरफ शबे कद्र, यही चीजें हैं जिसकी तरफ कुरान रसूल सभी दावत देते हैं। आपको रूह के लॉस को समझने की इतनी सलाहियत हो जाए कि आपको हमको इतना मालूम हो कि जिस तरीके से एक अगर हम तवज्जो के बगैर लफ्जिश करते हैं और ठोकर लग सकती है, तो उतनी ही ज्यादा उससे 100 मरतबा ज्यादा, उससे 1000 मरतबा ज्यादा लफ्जिश करने पर रूह को भी ठोकर लगती है। ये ऐसा नहीं है कि अगर रूह एक रात में 1000 महीनों की तरक्की कर सकती हो तो एक रात में 1000 महीनों की का जवाल ना कर सकती हो। जब चढ़ने के लिए वो ही है तो उसका उल्टा भी असर मुरतब होगा, उसके नतायज निकलने वाले हैं। अगर हमको इस पर यकीन नहीं है, हमारे गुनाह हमको सबक नहीं सिखाते। गुनाह का नतीजा क्या होगा? बहुत ज्यादा खाने का नतीजा कभी कभी मालूम हो जाता है। कबूल? बहुत ज्यादा खाने का कभी नतीजा मालूम हो जाता है, लेकिन रूह के नुकसान का नतीजा जब तक के तवज्जो न की जाए मालूम नहीं होता। रूह जवान की तरफ जा रही है या तरक्की की तरफ, वो जब तक के खुदाई रास्ते को तैयार कर इस बात पर यकीन नहीं कर लिया जाएगा कि तेरा वो रास्ता जो तूने हमारे लिए बनाया था और जिसके लिए तूने हमें कल किया और अपने आप को बेहतरीन खालक का उनवान और किताब दिया, वो इसलिए है कि हमारी रूह का सफर हम शुरू कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे बदन का सफर हम उस तरीके से कि जैसे जानवर खाते हैं खाकर आगे बढ़ाते रहे। ये फर्क का एहसास इंसान की ईमानी जिंदगी की इब्तिदा है। ये फर्क का एहसास इंसान की ईमानी जिंदगी की इब्तिदा है। वहीं पर ईमान शुरू होता है जहां पर इंसान को यकीन हो जाता है कि जैसे बदन के लॉज हैं, जैसे बदन के कवानीन हैं, वैसे ही मेरे रूह के कवानीन हैं और उससे ज्यादा बारीक हैं, उससे ज्यादा बारीक हैं। हिसाब किताब कोई छोटी चीज भी, कुरान की आयत में तफसील में नहीं जाता कि किताब को क्या हो गया, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, कोई चीज को इसने छोड़ा ही नहीं है, इसलिए नहीं छोड़ा है कि छोटे का भी असर रूह के रास्ते पे बड़ा होता है। छोटे का भी असर रूह के रास्ते पर बड़ा होता है, इसलिए हमको कभी कभी हदीसों में नजर आता है कि गुनाह को छोटा मत समझो क्योंकि हर गुनाह बड़ा है, इसलिए कि उसमें मुखालिफत खुदावंद है। कोई भी खुदा की मुखालिफत, खुदा की मुखालिफत होने के नाते छोटी नहीं हो सकती। असर के नतीजे में आप उसको सगीरा या कबीरा बोल सकते हैं। छोटी गलती हो जाए जिसमें दूसरों को ज्यादा असर ना हो, हमको ज्यादा असर ना हो, उसका नतीजे में हम उसको सगीरा कहेंगे। कबीरा इस वक्त कहेंगे कि जब उसका असर हम पर या किसी और पर बहुत ज्यादा होता, लेकिन मुखालिफत इलाही की बुनियाद पर वो तो कबीरा ही, बड़ी गुनाह बड़ा है। और अगर हम ये रास्तों को समझने लगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हम अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, अगर हमारी लालच अगर बढ़ जाती तो क्या है, अगर हमारी सिक्योरिटी के अगर लेवल हम मादी तौर पे अपने बढ़ाना चाहेंगे तो हमारा क्या नतीजा निकलेगा, और किस हद तक हम अल्लाह पर तवक्कुल करें हमारी हर सांस के लिए, हमारी हर ग्रोथ के लिए। यहां पर वो कुरानी आयत शुरू होती है कि जहां के ऊपर अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, यानी उसको पता चल गया है रूह को कि अगर मैं नमाज में आगे पीछे करा तो मुझे वो नतीजा जो मैं एक नमाज में हासिल करूंगा वो नतीजा हासिल होने वाला नहीं है। जिस तरीके से एक एक्सरसाइज करने वाला एथलीट एक खेलने वाला खिलाड़ी जानता है कि अगर मैं ये सिस्टम को अगर सही तरीके से नहीं बजा लाऊंगा तो बजाय इसके कि मेरी कमर मजबूत हो जाए मुझे दर्द शिकम या दर्द कमर शुरू हो जाएगा। उस बारीकी के साथ अगर वो जिस बदनी चीज की तरफ तवज्जो करता है इंसान को अगर एहसास हो जाए कि मेरी नमाज मेरी गजा है मेरा सबसे अच्छा अमल है। खैरुल अमल का मतलब ही क्या हो? सबसे अच्छा अमल का मतलब क्या? कुरान की आयत के मुताबिक जिक्रुल्लाह अकबर अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गजा और पानी और इसकी बात अल्लाह ने कुरान में नहीं कही, ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो ताकि हमारी नजर उधर चले जाती और इधर की तरफ ना आती। जिक्रुल्लाह अकबर अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। किसके लिए? हमारे लिए, अल्लाह के लिए, हमारे लिए। क्योंकि हम नहीं बाकी रहेंगे अगर हम उस जिक्र को बाकी नहीं रखते। जब हम बाकी नहीं रहेंगे तो सबसे बड़ी चीज हुई या नहीं हुई? जब हम अगर जिक्र सही नहीं करेंगे तो हम बाकी नहीं रह जाएंगे, किसी और शक्ल के जानवर में हमारी तब्दीली हो जाएगी। जाहिरी तौर पर आईना उस तब्दीली की तरफ निशानदेही नहीं करेगा, जाहिरी तौर पर आईना उस तब्दीली की तरफ इशारा नहीं करेगा, लेकिन हमारी रूह पूरी तरीके से मस्त हुई नहीं होगी। क्योंकि हमको अच्छाई और बुराई में हमारी ख्वाहिश के साथ अच्छाई और बुराई को लेबल करने का शौक और सलीका आ जाएगा। मैं 2 घंटे पहले टेलीविजन देख रहा था, अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं वो लोग, सीएनएन में बयान दे रहे थे कि इजराइल पर हमला कर दिया गया। लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने, इजराइल इज अंडर सीज। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इजराइल इज अंडर सीज, यानी अगर बाहर से सोचने वाला अगर देखे तो इजराइल पर हमला तरीके से बड़े तरीके पर कर दिया गया है। पता चला कि क्या हुआ तो कहा कि 2 सिविलियन मर गए 12 दिन में और यहां के ऊपर 2000 से ज्यादा जख्मी और 300 से ज्यादा अमवात। ठीक, मगर गुफ्तगू क्या हो रही है? बड़ी जगह उनका बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जो इतने बड़े पोस्ट पर था, कुछ साल पहले प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ा हार गया लेकिन फिर आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नंबर 2 पोजीशन होता है अमेरिका में। ठीक है, वो ये कह रहा है तो अगर सुनने वाला जिसको पूरी खबर नहीं पता तो क्या पता चलेगा कि गजा में रहने वाले कुछ बाशिंदे इसराइल पर हमला बोल दिए, ये कैसे हो गया? पढ़े लिखे लोग इस गुफ्तगू क्यों करते हैं? और हम भी उनमें कोई कितना फर्क है? जब इंसान अपनी दुनिया को अपनी आखिरत से अपने बदन को अपनी रूह से ज्यादा अहमियत देने लगेगा तो वो सच समझकर जो कहेगा वो झूठ होगा। कुरान की इब्तदाई आयतों में, सूरह बकरा की इब्तदाई आयतों में है कि जब इनसे कहा जाता है कि तुम फितना मत करो फसाद मत करो, ये कहते हैं कि हम सिवाय सुलह और सुलह के कुछ भी नहीं करते। इंसान कैसा हो गया है? ये रूह की कमजोरी और रूह को अंधेरा करने का। वरना ये आप याद रखिए कि जो बात कही जा रही है ये सीरियसली लाखों करोड़ों लोगों को सुनने के लिए की जा रही है, कोई कमरे में बैठकर नहीं की जा रही है। और कोई आदमी 2 जमा 2 5 बोलना पसंद नहीं करता, आखिर आदमी 2 जमा 2 5 बोलना पसंद नहीं करता। तो जब एक शख्स पढ़ा लिखा जानने वाला इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठा हुआ जिसकी फैसले बड़े हिस्से पर दुनिया के असर करते हैं, वो अगर ये बात कहे और नतीजतन इसराइल को दिफा का इख्तियार, हमको आपको क्या समझने आता है? ये समझ में आता है कि ये इस वक्त की जो दुनिया है, एक तरफ इस किस्म के लोग हैं कि जिन्होंने रूह का सबक पढ़ा ही नहीं। जिस तरीके से 2 1 2 2 2 4 वाला सबक इब्तिदा पढ़ाया जाता है लोगों को, वो सबक पढ़ाया नहीं गया है, वो उनके मरहले पर है। आइए अपनी जिंदगी के ऊपर, हम अपनी जिंदगी में कितनी इतनी ही औंधी बातें करते हैं बिल्कुल ऐसे महसूस करते हुए कि हम सच्ची बात कर रहे हैं। अमेरिका तक जाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी जिंदगी में भी गड़ा कर देख लें, हम भी ऐसी आंधी बातें करने के आदि हो गए हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं। क्यों? कि अल्लाह ने हमको मखसूस तौर पे चुन लिया। कहां पर चुना? वो चुन लिया हमको नहीं मालूम, और चुनने का यह नतीजा हम कभी खराब आलू टमाटे घर ला सकते हैं, सड़ा हुआ मौत घर ला सकते हैं। अल्लाह ऐसे नहीं चुनता। अल्लाह जिनको चुनता है पैगंबरों को भी आजमा के चुनता है। इज़्तला इब्राहिम और अबू के कलिमात फतमहुना अल्लाह इन्नी जाइलो कलिनास। हमने जब कई बातों में इब्राहिम को आजमा लिया, कई बातों में आजमा लिया और उन्होंने उसे तमाम किया, तब अल्लाह ने कहा कि इन्नी जाइलो कलिनास इमामा। तो इब्राहिम को भी दुनिया में आजमाने के बाद इमाम का खिताब मिला। तो हम कैसे चुन लिए गए मुझे समझ में नहीं आता। गफलत हमारी, हम जानते हैं अल्लाह की कोई गफलत हो सकती है? इतनी मर्तबा हमारे जबान से सुभान अल्लाह निकालता है, बेऐब उस अल्लाह की जात। अरे अब तो समझो कि बेऐब जात हम जैसे को चुन लेगी तो ऐबदार हो जाएगी, हमारा क्या होगा तो नहीं मालूम। बेढब थे बेढब रहेंगे, लेकिन उसके नाम पर हर्फ आ जाएगा कि हम जैसे को चुन लिया उसने, कि जिसको हम दिन रात सुभान अल्लाह कहते हैं, पाक और मुनज्जा है उसकी जात, किसी ऐब से कोई ऐब उसकी पास नहीं आ सकता। ऐब हमको चुन लेगा तो आ जाए। बख्शना अलग चीज है, चुनना अलग चीज होती है। बख्शना अलग चीज है, चुनना अलग चीज होती है। बख्शाइश उसकी बे इंतहा है, मगर फकत इसलिए है कि इंसान जब भी उसकी तरफ आ जाए उसको अपना, उसने अपनी कोशिश, इंसान की कोशिश को कभी मामूली नहीं समझा, इंसान के गुनाह को भी कभी मामूली नहीं समझा, लेकिन बख्शने का वादा उसका है। लेकिन वो इंसान के जो बख्शाइश को बहाना बना ले, बख्शाइश को बहाना बना ले, उसने अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता हमेशा के लिए अपने लिए बंद कर लिया। बख्शाइश इसलिए है कि हमारी कमजोरियों की तरफ नजर रखकर, हमारी कमजोरियों पर बारे गुना रहने के नतीजे में हमारी अल्लाह की तरफ हरकत कुंद या सुस्त या रुक जाएगी, इस बुनियाद पर बख्शाइश का सिलसिला जारी रखा गया। हमारा हक नहीं है, उसका हक। लेकिन क्यों? ताकि उस बोझ के तहत गुनाह के जो दो चार कदम हम अल्लाह की तरफ चल सकेंगे, वो भी क्योंकि नहीं मुमकिन होगा अगर वो गुनाह का असर मुरतब हो जाए, तो इसलिए वो कहता है कि हम याफ़ूनिल कसीर करते हैं, कसीर चीजों को हम बख्श देते हैं। अब जब रूही सफर करने वाला जब अल्लाह के रास्ते पर आता है, तो ये दोनों चीजों की तरफ उसकी नजर पूरी होती है, एक अपनी कमजोरी की, दूसरे अपने पोटेंशियल की, अपने अंदर की मौजूद कुव्वत की। तो एक तरफ अपनी कमजोरी से गुनाह करने की जो तौबा के जरिए से, और उसी बुनियाद पर अल्लाह ताला फरमाता है युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, हम तौबा करने वालों को और अपने आप को पाक रखने वालों को पसंद करते हैं। या खुद अपने आप को इन्नहु काना तव्वाबा कहता है, जो ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। ये एक पहलू है हमारा कि जो हमारी कमजोरी है उसका उसने ख्याल रख लिया है। नफ्स जो अपने आप पर जुर्म करती है, हम तेरे तमाम गुनाह बख्श देंगे, इसी उनवान से कि तुम में बोझ और बारे गुनाह उठाने की जो सलाहियत है वो बहुत ही महदूद है। मैं जानता हूं, तौबा करो बख्श दो। तौबा वही करेगा जिसको पता है कि उसके पास अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए और कोई बहाना और कोई रुकावट नहीं है सिवाय इस तौबा की। कुछ तौबा इसलिए होती है कि जिस तरीके से इंसान अपना हाथ जला ले उसके बाद तौबा करें, फिर नहीं जलाऊंगा। कभी तौबा इसलिए भी हो सकती है कि इंसान दुनिया के घर में गलत काम करे, उस दुनिया के गलत नतीजे के नतीजे में वो अल्लाह की तौबा कर ले। ये तौबा उसको दुनिया में गलत काम करने से रोक लेगी, अल्लाह का रास्ता नहीं सिखाएगी। गलत काम किया था तौबा किया, दुनिया भी नुकसान के लिए तौबा किया, अल्लाह बख्श दिया, वो दुनिया भी नुकसान से बच जाएगा। लेकिन अल्लाह के रास्ते पर जिन्होंने तौबा की है, इसमें आप पैगंबरों को, औसिया को, आइमा को देखेंगे ज्यादा, कि जिसकी तवज्जो के साथ तौबा अजीब तरीके से हमको हैरान कर देती है। अरे हम कभी वैसी तौबा सोच नहीं सकते, ये करते क्यों हैं? वो तौबा इसलिए है कि वहां से वहां तक जाना है, और वो जाने के लिए जो सफाई की जरूरत है वो सफाई का काम अल्लाह करता है, रूह की क्लीनिंग का काम अल्लाह करता है। हमारे अंदर से तवज्जो के हटाने के नतीजे में जो हमसे हमें कमजोरी आती है वो कमजोरी को अल्लाह दूर करता है। इसलिए बार बार जो अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, बार बार जो अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हैं, अगर हमको ऐसे अखबार मिलते हैं, रसूल अल्लाह को पुकारते पुकारते अपने पैर सुझा लेते हैं, ठीक है, कुरान की आयत आती है कि रसूल हमने ऊपर ये जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी कि तुम अपने ऊपर मशक्कत बोलो, ठीक, क्यों? इसलिए कि रास्ता मालूम। या अगर हम देखते हैं कि हजरत अली जब कहते हैं कि इतना लंबा रास्ता और इतना कम जात मेरे पास है, इतना कम तोशा मेरे पास है, तो ये तोशे की किल्लत की तरफ अली की नजर जाती है कि मेरे पास इस रास्ते को तय करने के लिए है क्या, मैं किस तरीके से इस रास्ते को तय कर पाऊंगा। जब ये महसूस होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, वहां पर अल्लाह का हाथ इंसान को थाम लेता है, मैं सब कुछ हूं, तू भी मुझे लाइट धरा धक्का देती, ये अंबिया का उसिया का तरीका नहीं होता। मैं कुछ नहीं हूं, तू मुझे लेकर चल। जितनी ताकत बढ़ती जाएगी, जितनी तवज्जो अल्लाह की तरफ बढ़ते जाएगी, अपनी हकीकत उतनी ज्यादा सिफर बढ़ती जाएगी। हर कदम के लिए उसकी मदद की तलब करेंगे, और जब कुछ होगा तो उसकी मदद को अपने लिए वाजे तौर पर मुशाहिदा करेंगे, देख सकेंगे। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का जब सिलसिला जारी होने लगता है तो ये अलग किस्म की मखलूक हो जाती है, जिसको फरिश्तों को बता के अल्लाह कहता है कि तुम नहीं जानते वो जो मैं जानता। ये कॉज एंड इफेक्ट को ईजाद करने के लिए हमको दुनिया में भेजा है, वरना मादी कॉज एंड इफेक्ट किसको नहीं आदू। मादी कॉज एंड इफेक्ट, मटीरियल कॉज एंड इफेक्ट किसको नहीं पता, छोटे बच्चे को भी पता है। एक मर्तबा अगर गलती से आग में हाथ डाल देगा दोबारा नहीं डालेगा, समझ जाता है। पहली मर्तबा उसको जब नहीं होती है तो जाएगा, जरूर जाएगा, रोकने की भी कोशिश किए जाएगा। गर्म चीज को हाथ लगाने से रोकिए, वो पूरी कोशिश के साथ लगाने की, एक मर्तबा अंदाजा हो जाएगा, उसके बाद देखिए जाएगा। तो ये चीज तो हमें आती है, फिर हमारे में वो खूबी ही क्या है कि जो फरिश्तों के सामने हमारे सजदा रेज़ बना, कोई भी नहीं जब तक कि हमें ये रास्ते समझ में ना आए। इसी बुनियाद पर हजरत अली का जो कौल है कि मुझसे इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं सवाल कर लेना, मैं आसमानों के रास्तों को बेहतर जानता हूं बनिस्बत दुनिया के रास्तों, वो इसी बुनियाद पर है। तुम दुनिया का कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हो, तुम आखिरत के कॉज एंड इफेक्ट की क्यों, आसमानों के कॉज एंड इफेक्ट की बात क्यों नहीं करते, रूह के कॉज एंड इफेक्ट की बात क्यों नहीं करते? रूह का भी तो कोई है। वो है आज की दुनिया, आज की दुनिया हकीकतन कहो, उमूमी तौर पर कहो तो बगैर रूह के होगी, ये बेरू दुनिया है। इस दुनिया में रूह नाम की चीज ही नहीं है। इसके जितने भी हिसाबात और किताबात होते हैं वो पूरे के पूरे मादी बुनियादों पर, चाहे वो मोमिन के हो या काफिर के, चाहे वो मोमिन के हो या काफिर के, काफिर तो मोमिन हो नहीं सका, मोमिन जरूर काफिर हो गया। मैं उमूमी तौर पे कर रहा हूं, मैं तवज्जो एक एक फर्द के ऊपर बात बिल्कुल नहीं है, एक एक फर्द के ऊपर बात बिल्कुल नहीं है। उमूमी तौर पर सोसाइटी के लेवल पर अगर देखा जाए तो मादी कैलकुलेशन सबको करना आता है, रूही कैलकुलेशन किसी को नहीं आता। उमूमी तौर पे कर, उमूमी तौर पे कर, नतीजा क्या हो रहा है, जहां पर भी आप देखिए रूह से कम काम हो रहा है मादे से ज्यादा। जब मादा मादे से टकराएगा और फकत मादी ताकत की बात समझ आएगी तो बोलिए झगड़ा कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। जहां पर बुराई को अच्छाई से दूर करो, हो सकता है कि तुम्हारा सब दुश्मन तुम्हारा अच्छा दोस्त बन जाए, जैसे कुरान कहता है, वो वाली कैफियत अगर ना हो तो कत्ल में जल्दबाजी ना करना, इसराफ ना करना जो कुरान कहता है। ये कत्तो गारतगरी किसका नतीजा? अफसोस की बात यह कि मुसलमान दुनिया में जितनी आज कत्तो गारतगरी हो रही है उतनी पूरी दुनिया में बाकी के हिस्से में नहीं हो रही। अल्लाह तआला ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोमिन जाके काफिर हो गया। काफिर की ईमान की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले मोमिन के ईमान की बात तो कर ले। आज के दौर में खुदा की वहदानियत को मानने वाले मुख्तलिफ अक्वाम में मौजूद है, क्योंकि फितरत खुदा को एक मानने वाले आपको मैं क्रिश्चियंस में बता सकता हूं, मैं आपको यहूदियों में बता सकता हूं, मैं आपको हिंदुओं में बता सकता हूं कि खुदा को एक मानते हैं और उसको मादी नहीं समझते। आर्या समाज लीजिए जो बुतपरस्ती के खिलाफ है, ब्रह्म कुमारी इसको लीजिए जो बुतपरस्ती के खिलाफ है। ठीक, क्रिश्चियन में आपको जो है यूनिटेरियंस मिलेंगे कि जो तीन खुदा को नहीं मानते, एक खुदा को मानते। यहूदी दीन में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मुवाहिद हैं, इनकी तस्दीक कुरान भी करता है कि जहां पर कहता है कि अक्सर हम फासिकून, जहां पर यहूदियों की बात करता है, जहां पर ईसाइयों की बात करता है, जहां पर अहले किताब की बात करता है, वहां पर कहता है अक्सर हम फासिकून। उसका मतलब यह है कि कुछ फासिक नहीं है। उनकी भी तारीफ आपको सूरों में मिल जाएगी, इब्तदाई सूरों में मिल जाएगी, बकरा में और आले इमरान में। आज हम जो मुसलमान, चाहे वो किसी किस्म के मुसलमान, आज हमारा मकसद है क्या? दुनिया को क्या मिसाल बनाकर पेश करना चाहेंगे? दुनिया में ईमान का तो बोलबाला नहीं है, कुफर का बोलबाला है। अगर आज हम अपनी सोसाइटीज को उस बुनियाद पर के जो रूही असरात का नतीजा बनता है, यानी रूह को आगे बढ़ाने का नतीजा होता है, अगर आज हमारी सोसाइटी चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर उन बुनियादों पर ऑर्गेनाइज हो जाए, उन बुनियादों पर ऑर्गेनाइज हो जाए, तो आया हम दूसरी मखलूक नजर नहीं आएंगे? इंसान और आम जानवर के दरमियान बदन और रूह का फासला है। बदन दुनिया से निकलता हुई निकली हुई चीज का नाम है, रूह अल्लाह की तरफ से फूकी गई चीज का नाम है। ये और वो कितना फासला रखते हैं? एक ग्रुप इंसानों का बदनी ताकतों को बुनियाद बनाकर हरकत कर रहा है, दूसरा ग्रुप इलाही ताकत को, जो रूह की ताकत है, उसको बुनियाद बनाकर हरकत कर रहा है। तो ये दो ग्रुपों में कितना फासला हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? सच बोलिए, है पीठ मैं आपकी, मैं आप मेरी, खूब थपक ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको ईमान पर रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान पर हैं। उसका नमाज, उसकी नमाज पढ़ते हैं, उसका रोजा रखते हैं, सब कुछ। मगर आइए सोसाइटी के लेवल पर कुछ भी नहीं। वही खाली दावे, उनके झूठे हमारे आधे सच्चे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह है कि ईमान जैसी चीज वजूद में आ ही नहीं रही है, और वो इसलिए नहीं आ रही है कि हम ईमान को हम अपने बाप की जागीर समझ रखे। हमको ईमान टटोलने की जरूरत जो है किसी और जगह पर नजर नहीं आ रही है। कई लोग हैं जो फितरतन ईमान रखते हैं, रसूल के महबूस होने के वक्त भी खुद मक्के जैसी जगह पर जहां पर शिर्क आम दीन था, वहां पर हुनफा मौजूद थे। तारीख में उनके वजूद का इकरार है कि वो लोग जो बुतपरस्ती से किनारा कश थे और जो अपने आप को पाक और साफ रखते थे, ये इनको हनफा कहा जाता था, हनीफ कहा जाता था, जहां पे अल्लाह कहता है कि दीन हनीफा की बात करता है, प्योर रिलीजन की बात करता है, जब ये लोग थे। आज के दौर में भी हर कौम में हो जाएंगे। हो ये क्या है कि हम अपने आप को पहले हिस्सों में तकसीम कर लिए और अब हम ये साबित करने पर तुले हैं कि हमारा फिरका ही सबसे ज्यादा आला और अच्छा है, हमारा फिरका ही सबसे ज्यादा आला और अच्छा है। ये आपको हमको किसने कहा था कि साबित करें? बतलाइए, ये जंग लड़के आओ किस अल्लाह ने हमको बतलाया है? मुसलमानों की बात करो, तो सवाल थे जो हम करे थे, जो आप बाद में उसका मैं जवाब, किस अल्लाह ने कहा है कि तुम अपने फिरके को सच साबित करके आ जाना दुनिया में, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, जंग लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, आबरू दीन की खत्म कर देंगे, ना वो ईमान पे बाकी रहेंगे ना हम ईमान पे बाकी रहेंगे, मगर साबित ये जरूर करेंगे कि हम अपन। कोई बात हुई? जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो तबाह हो रही है, और फिर भी लड़ रहे हैं। अरे जानवर नहीं करते ये काम, जानवर नहीं करते ये काम। हो सकता है कुछ गोश्त के टुकड़े पर, किसी चिचड़े पर जो है वो कुत्ते लड़ लें, मगर ऐसी चीज के ऊपर कि जो साया हो, आप किस जानवर को लड़ते हुए देखें और कितनी देर तक लड़ेगा, कोई चीज का साया पड़ रहा हो, ठीक है, उनको वो हिलने के नतीजे में दरख्त के पत्ते होंगे, उनको जानवर जैसा दिखा, एक कुत्ता उस पर टूट पड़ा, फिर दूसरा कुत्ता टूट पड़ा, जिस हद तक उनको एहसास होगा कि उसमें कुछ चीज है तब तक ही लड़ेंगे, उसके बाद भी लड़ेंगे, 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड, उससे ज्यादा क्यों? कि अल्लाह उनको नाक ऐसी दिया है कि वो थोड़ी देर में पछाड़ लेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं। इंसान को अल्लाह ने नाक नहीं दी, ईमान दिया। अब ईमान ही नहीं है तो दो कुत्ते अपनी नाक की कुदरत की बुनियाद पर समझ लेंगे कि वो चीज लड़ने के काबिल नहीं, वो एक साया था जो जानवर नुमा दिख रहा था, तो 2 सेकंड से 5 सेकंड में लड़ाई खत्म हो गई। हमारा ईमान मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी। तो ये अगर हालत हो जाए है या नहीं है? और एक इसके साथ इकबाल का शेर है, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का वो गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। तो ये हालत हो रही है कि जिसको पता भी नहीं है, तो हम हकीकतन उन दो जानवरों मानिंद हो गए कि जिसकी नाक की सुनने की कुदरत चली गई हो। वो जानवर जो इंसान ने कुत्ते की दी है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान की तशबीह कुछ जगहों पर कुत्ते से की है, वो तो कुत्ते मानिंद है, छेड़ो तो भी भोके, ना छेड़ो तो भी भोके, फर्क क्या है? ठीक है, खदे से भी दिए हमारी अकमिल अस्मारा। तो अल्लाह क्यों हमको कुत्ता या क्यों हमको गधा कहकर पुकार रहा या उनसे तशबीह दे रहा, और शायद दोनों जानवरों की उसमें तौहीन भी हो रही है। ये हम जो यहां पर 5 सेकंड के लिए नहीं लड़ते, ये इंसान तो जो है 50 साल तक लड़ सकता, और 50 साल के बाद भी लड़ना इसलिए छोड़ देता है कि अब लड़ने की ताकत नहीं रही, मगर झगड़ा अपनी जगह पे बाकी है, क्योंकि मादी तौर पर इंसान को अगर आदत मादी ही तौर पर दुनिया को समझने की हो जाए, तो कुरान की वाहिद की तरफ गौर कीजिए, जहां कहता है कि जब इनको आमा हम अंधा महशूर करेंगे, तो ये कहेंगे कि मालिक हमको क्यों तूने कयामत के दिन अंधा महशूर किया कि जबकि हम देखने वाले थे। ये देखने वालों की निशानी तो नहीं है, क्या देखते थे अल्लाह को मालूम। अल्लाह कह रहा है कि जो देखना था तुमने नहीं देखा, जो इबरतें तुमको लेनी थी तुमने नहीं ली, ये सब करने के नतीजे में जो तुमने अपने झंडों को बुलंद करते हुए अपने आप को हक का दावेदार बनाया, उन झंडों की मुझे जरूरत नहीं थी, ना ही तुमको जरूरत थी, तुमको गुफ्तगू अमन अमान दूसरों में अल्लाह की तरफ से दी गई फितरत की तरफ बुलाने की कुदरत। रसूल ने किसकी तरफ बुलाया इंसान, मुशरिकीन को किस तरफ बुलाया? क्योंकि रसूल को यकीन था कि इसमें वो फितरत है जो ईमान में तब्दील हो सकती है, इसलिए रसूल गम करते थे। अल्लाह का बाकी नफ्स का अल्लाह यूं मेनु बिहाज़ल हदीस असफा, कुरान की आयत है, रसूल तुम अपने आप को मारे डाल रहे हो इस बात पर कि ये लोग ईमान नहीं लाते इस कुरान पर, इस गुफ्तार पर। तो क्यों रसूल गम कर रहे हैं? क्योंकि वो चीज जो ईमान की शक्ल इख्तियार कर सकती है, वो कोयला जो हीरा बन सकता है, और बावजूद इतना करीब आने के वो कोयला अपने आप को हीरा नहीं बना रहा, तो उसको कि जिसको फर्क महसूस हो रहा हो या दिख रहा हो एक कोयले में और एक हीरे में, वो कितना गमजदा नहीं होगा। सामने लाखों हजारों कोयले पड़े हैं, उनमें से कुछ हीरे बन रहे हैं और कुछ इनकार कर रहे हैं हीरा बनने से, और अल्लाह कह रहा है कि तुमको जबर करना नहीं है रसूल, लाइक रहा फिद्दीन, एक आयत। दूसरी आयत है क्या रसूल, तुम उन पर जबर करोगे नहीं मान ले आए। और एक आयत जहां अल्लाह ताला फरमाता है मोमिनीन से, कुछ मोमिनीन को इस बात से मायूस हो जाना चाहिए कि सबके सब ईमान ला लेंगे, बावजूद उसके आपको कोशिश करनी है, हमको कोशिश करनी है कि फितरत में ईमान किसके है। पहले तो सबसे पहले हमारे खुद को छोड़ के पूरी दुनिया के ईमान के लिए जो है हमने तराजू बना दी, अपने ईमान की तराजू वो कब की तोड़ के फेंक दिए, हमको ईमान की तराजू की क्या जरूरत है, हम तो तोड़ने वाले। ये दूसरों को तोलने की आदत जो इंसान में हो गई है, वो इंसान का जो यकीन रखता है कि खुद गुनाह का, अरे अल्लाह को तराजू उठाने दो ना, अल्लाह की तराजू का तो यकीन है नहीं, अपनी तराजू फौरन उठा लेते हैं। जिसको अल्लाह की तराजू का यकीन है, जिसको रूह के कॉज एंड इफेक्ट का यकीन है, वो बेचैन नहीं होता, उसको पता है कि जो रूह के रास्ते पर नहीं चलेगा उसका क्या नतीजा होगा, बुलाता जरूर रहेगा लेकिन बेचैन नहीं होगा, क्योंकि हमको अल्लाह ने रिसालत देकर नहीं भेजा। रसूल जो कोशिश करते थे, रसूल को रिसालत थी कि पयाम पहुंचाओ जबर मत करो, तो रसूल अंदर से बेचैन होते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ लें। कुरान की खुद आयत है फिर ला शक फाते उस समावाती वलर्स, कि अल्लाह की जात में शक के जो दुनिया और आसमानों का पैदा करने वाला है, क्रिएटर है, ओरिजिनेटर। तो ये चीजों को हमें जब समझने की जरूरत है, ईमान हमको दूसरों में ढूंढना पड़ेगा। हम शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम ईसाई यहूदी, इन बड़े ग्रुपिंग्स की बुनियाद पर सोसाइटी में काम नहीं कर सकते। सोसाइटी में जहां पर भी ईमान नजर आ रहा हो, अच्छे फेल जो ईमान की बुनियाद पर अंजाम दिए जा सकते हैं, गुजरात के फसादात पर सबसे ज्यादा इंक्वायरी अगर की गई है तो किन्होंने किया आपने देख लीजिए, जो रिपोर्ट फाइल की गई है कौन से ग्रुप ने किया और उसमें कितने मुसलमान हैं और कितने हिंदू हैं देख लीजिए। जो लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आज गजा में आप बमबारी देख रहे हैं, गजा में कितने बाहर से यूरोपीय ममालिक से आए हुए डॉक्टर मौजूद है इस वक्त, जबकि कहीं पर भी बम गिर सकता है, जबकि हमारे पास से लोग जाने को डरेंगे, है या नहीं है? इतना आसानी से ईमान की तराजू उठाकर खड़ा होना, लोगों को इधर और उधर तकसीम करने का काम करना, और दुनिया कुफ्र चाहता यह है कि हर ईमान वाला अपने हाथ में तराजू उठाए, और उसके बाद जो झगड़ा शुरू होगा घर से शुरू होगा, पहले ये बाप को बेटे का ईमान नजर नहीं आएगा, माँ को बेटी का ईमान नजर नहीं आएगा, बेटी को माँ का ईमान नजर नहीं आएगा, भाई को भाई का ईमान नजर नहीं आएगा, पड़ोसी को पड़ोसी का ईमान नजर नहीं आएगा, क्योंकि सब क्या आपने तराजू, और जब हम तराजू पकड़ेंगे तो पासंग हो गई है या नहीं है? हम सीधा क्यों बोल गए तराजू, अपने गुना जो साबित शुदा गुना है जिसके ऊपर हमारे फरिश्तों ने अच्छी तरीके से जो है मोहर लगा दी है, वो बिल्कुल गुना नजर नहीं आएंगे, वो तो इत्तेफाकात होंगे, और अगर गुनाह मान भी लेंगे तो अल्लाह बख्शने वाला क्यों है फिर? अगर गुनाह करने के बाद बख्शने वाला अगर है तो हमारा तो ये तसव्वुर है कि हम करने से पहले हमारा गुनाह बख्श दिया जाता और दूसरे का गुनाह करने से पहले लिख दिया जाता है, मंजिल अच्छी है। नतीजा क्या होता है ऐसी फिक्र का, नतीजा क्या होता है? ईमान के दर्जात हासिल होते हैं या कुफ्र के अंधेरों में इंसान की रूह चली जाती है? अगर ये अय्याम की कोई अहमियत है, और यकीनन मुसलमानों के पास अहमियत होनी चाहिए, और अल्लाह के वादे अगर हक है कि जो यकीन नन मुसलमान कबूल करता, तो हमको अपनी रविशों में अपने तरीकों में तब्दीलियां लानी, ईमान को हर जगह ढूंढना है अलामतों से, और वो अलामतें शायद हमें कम हो और दूसरों में ज्यादा हो, ये भी लेकर चलना है। अगर मैं सबसे आला मोमिन हूं समझकर हरकत कर रहा हूं तो कोई हरकत कामयाब होने वाली नहीं है। रसूल ने भी जब हरकत की थी तो रसूल ने भी इसी बुनियाद पर हरकत नहीं की थी कि मैं सबसे आला हूं तुम लोग मेरे जैसे हो जाओ, वो तो कुरान की आयत कह रही है लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूल में बेहतरीन मिसाल है। रसूल ने अपनी कोशिशों को ईमान की बुलंदियों की बुनियाद पर साबित नहीं किया है, अपने सजदों के जरिए से साबित किया, अपने झुकने के जरिए से साबित किया है, अपने अकड़ने के जरिए से साबित नहीं किया है। वो बेमार रहमत ही मिनल्लाह लितलब, ऐ रसूल ये तो अल्लाह की रहमत है तुम पर कि तुम उनसे नरमी से पेश आते। ये नरमी थी रसूल की, सख्ती से रसूल ने क्या किया बता दीजिए, अगर वैसा होता तो कुरान क्यों कहता इन्ना अरसलनाका रहमतन लिल आलमीन। ये क्यों सख्ती कहां पर काम आएगी? जिसको ईमान के कॉज और इफेक्ट का अंदाजा नहीं है वो हर चीज ताकत के जरिए से हासिल करने की कोशिश करेगा। ईमान इस्लाम के इब्तदाई दौर में भी एक कैफियत तारी हुई थी जिसके नतायज अच्छे नहीं निकले, आज भी एक कैफियत तारी हो रही है जिसके नतायज अच्छे नहीं निकलने वाले। आप ताकत के जरिए से एक मुद्दत के लिए कंट्रोल पा सकते हैं। 12वीं 13वीं सदी में मंगोलों का हमला हुआ, तमाम बिलाद इस्लामी को समेटते चले गए यूरोप तक, इंडिया में भी आए, तिमूर लंग ये वो जो आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ठीक है। मुसलमान नहीं थे, नाम उनके साथ खान था, चंगेज का, चंगेज खान मुसलमान नहीं थे, दरिंदा था जो अपनी जगह के ऊपर, अब खान क्योंकि नाम मारूफ हो गया है तो लोग समझते हैं कि मुसलमान नाम है। उस वक्त जो लोग निकले थे मंगोलिया से ये मारते हुए जो निकले थे उधर जापान की तरफ और इधर की तरफ जो लेकर चले तो पूरा अफगानिस्तान उस जमाने हिंदुस्तान का हिस्सा था, ईरान इराक शाम आगे बढ़ते बढ़ते यूरोप। हुआ क्या, क्या बाकीरा फिक्र क्योंकि नहीं थी, ब्रूट फोर्स इसको कहते हैं, फकत ताकत थी, ताकत तबाह कर सकती है ईजाद नहीं कर सकती। ईजाद के लिए एक इलाही उंसुर की जरूरत होती है। आज की दुनिया में जब कुफ्र इतना ज्यादा है तो ईजाद कहां से होगी, जब ईजाद नहीं होगी, नई सांस फूकी नहीं जाएगी, कोई मसीहा नहीं होगा तो नतीजे में जहां पर जान नहीं आएगी वहां पर सड़न होती है नहीं होती है, इंसान के बदन से उसकी रूह निकल जाए फौरन उसका सड़ना शुरू हो जाता है नहीं हो जाता है या नहीं है। जो इंसान का बदन 60 साल 70 साल जितनी भी उसकी उम्र रही हो कभी सड़ा नहीं था, रूह के निकल जाने के नतीजे में इमीडिएटली सड़ना शुरू होता है नहीं होता है। आज का दौर जब काफिराना है मुशरिकाना है और जिसमें हमारा भी काफी हद तक हिस्सा है तो उसके नतायज ये हो रहे हैं कि सड़न हो रही है दुनिया में और वो सड़न के आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आसार नजर आ रहे हैं। ये जो हमारे पास बार बार जो है न्यूज पे आप जाकर आप खोलिए, या तो कहीं फतवा वारंट करी, या कोई प्लेन को मारकर पैसेंजर गिरा दिया, या कोई रेप की बात हो, क्या रहा है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको सड़न नहीं कहते तो क्या कहते। जिन उम्र के बच्चों को प्रोटेक्ट करना फर्ज बनता है इंसान का, जिसको बिचारों को कुछ भी नहीं पता कि जिनसी ख्वाहिशात क्या होती हैं, उनके साथ जो फेल अंजाम दिए जा रहे हैं और जाहिरन आखिर लोगों से ये अंजाम दिए जा रहे हैं, कोई पागल से दिए जाते हैं तो अफसोस की बात नहीं, देखे लाख में एक आदमी पागल, 10 लाख में एक आदमी पागल, गलती पागलपन की, लोगों को भी उतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, ये अच्छे खासे लोगों के साथ हो रहा है, इसको सड़न नहीं बोलेंगे। आज जब कुफर की अलामतें वाजे से वाजे तर होते जा रही हैं, अगर हमको ईमान के कॉज एंड इफेक्ट का अंदाजा है और हम फिर भी ईमान के कॉज एंड इफेक्ट की सबब और मुसबब की इल्लत और नतीजे की तरफ हरकत नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब आज जितनी दुनिया को ईमान की जरूरत है आज से पहले कभी नहीं थी। क्योंकि एक छोटी सी ट्रक पे रखकर जो मिसाइल फायर किया गया है वो 10 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचे उड़ने वाले प्लेन को नीचे ला दिया, जो एक लॉरी से लॉन्च किया गया है ऐसा प्लेन के जो तकरीबन 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर की रफ्तार से 33,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था, उसको आप एक ट्रक पे माउंट किए हुए रॉकेट से उड़ा दे रहे हैं। और कितने लोगों के पास ये चीजें आ जाएंगी, कौन सा प्लेन आसमान में जाकर वापस पहुंचने के काबिल रहेगा। टेक्नोलॉजी की बात बोल रहे हैं ना, तो चैन और सुकून जिस तरीके से शहरों में खत्म हो गया है बैन अल-अक़वामी तौर पर भी खत्म होना शुरू होगा या नहीं होगा, अगर ये आज के अलाम हम देख रहे हैं और तारीख की पहिया बड़ी तेजी से घूमने लगा है। क्योंकि बीमारी में भी चाहे वो बदनी हो एक लेवल तक एक स्पीड पर जाती है, मगर एक लेवल के बाद जब इंसान के रेजिस्टेंस को तोड़ देती है उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है वो अलग ही हो जाती है। ठीक है, जब तक के उसके बॉडी का रेजिस्टेंस होता है उसकी ग्रोथ का एक पैटर्न होता है उमूमी तौर पर, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद तेजी से बीमारी का असर होता है और इंसान को भी टाइम नहीं रहता। रूही तौर पर भी मफलूज इंसानियत को आज जितनी ईमान की ऑक्सीजन की जरूरत है और ईमान वालों को यह जानते हुए कि इस ऑक्सीजन की जरूरत है और यह ऑक्सीजन उनकी जात में पहले और उनके अतराफ में बाद में आएगा, तो वो अपनी तरफ कितनी तवज्जो नहीं करेंगे, अपनी जात में ईमान के उन अलायम को उन निशानियों को पैदा करने की कितनी नई कोशिश करेंगे कि जिसके नतीजे में और भी नतायज मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। जब अल्लाह ने कुफ्र के नतायज में दुनिया को सड़ा रहा हो तो जब रहमतुल आलमीन के जरिए से दुनिया को हयात दिया हो, हिदायत दोगे जो मर चुका है यानी जिसकी ईमानी मौत वाकई हो चुकी है, तो ये सब चीजों को देखते हुए ये अय्याम को मखसूस समझते हुए अगर हम अपने ईमान की तरफ मुतवज्जे हो और उसके नतीजे में जो आने वाले असरात हैं उसकी तरफ गौर करें, तो जिस तरीके से कुफ्र का असर दिख रहा है उस तरीके से ईमान का असर भी दिखने लगेगा, पहले कम उसके बाद ज्यादा। जैसा दुनिया के बदन पर कुफ्र का गलबा हुआ है उसकी नजात ईमान के बढ़ने से होगी, क्योंकि हम इस बात के कायल हैं, हम इस बात के कायल हैं कुरान के बुनियाद पर कि इस दुनिया के वारिस अल्लाह के नेक बंदे होंगे। ठीक है, ये तो हमने पुरानी किताबों में लिख दिया है, तौरात में लिख दिया है, कुरान की आयत है इन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून, इस दुनिया के वारिस मेरे अच्छे साले बंदे होंगे, और ये कुरान का वादा नहीं है, ये तौरात का वादा है। तौरात का वादा है तो वादे तो पूरे पहले कर चुका अल्लाह, हमको ये कहकर कहता है कि तुम पहली गुज़िश्ता किताबों में ईमान रखो और कुरान पर भी ईमान रखो। गुज़िश्ता कौमों के किस्से बार बार जो कुरान में सुनाता है दिखाता है वो इस अनुमान से ही है कि देखो एक सिलसिला है जो रूह का अपनी जगह के ऊपर चलता है, वो रूह के सिलसिले जहां जहां पर कारफरमा होंगे उसके नतीजे निकलेंगे। अब तुम्हारी बारी आ गई, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम।
नारे सलवात
जहां तक भी मुमकिन हो सके, अगर हम अपने ईमान की तरफ तवज्जो नहीं करें और ये अय्याम गुजर जाए और हमारे पास ये बात समझ में आज नहीं आए कि ईमान कर क्या सकता है। आपको ये जरूर पता है कि इस लाइट के होने से हम आप यहाँ पर बैठे हैं, इस टाइम पर पंखा भी चल रहा है, मेरी आवाज भी आप तक पहुंच रही है इसकी मदद से, तो एक लाइट के जरिए से हम ये सब काम कर सक रहे हैं, निस्बतन आराम के साथ बैठे हुए हैं। ईमान को भी इसी तरीके से अगर हम कुछ देर तक देखें और समझें और विजुलाइज करें तो यही नतीजा निकलेगा कि ईमान भी एक बस्ती में वही असर करता है जो इस रोशनी इस जगह पर करती है। इतना आसानी से समझ में नहीं आता है जितना कि एक रोशनी अंधेरा हो जाएगा आपको मेरे को समझ में आ जाएगा, लेकिन जहां पर लोग रोशनी से बिल्कुल ही आशना ना हो, आपके हमारे अगर कुछ ईमान की रोशनी को कुछ से बदतर समझेंगे, और जब अंबिया को और नेक लोगों को और अदालत तलब करने वालों को जो कुरान में और कुरान गुज़िश्ता किताबों में कहा गया है कि मारा गया है, वो इसलिए किया गया है कि उनके ईमान को लोगों ने कुफ्र समझा, अपने कुफ्र को ईमान समझा। इंसान के अंदर अलग अलग किस्म की खूबियां हैं, जब अपनी जात से मोहब्बत करने लगता है तो अपने जुल्म को इंसाफ समझता है और दूसरे के इंसाफ को जुल्म, खुद को हर चीज से मुनज़्ज़ह और दूसरे को हर चीज का इल्जाम लगाने पर आमादा हो जाता है। तो नतीजा क्या होता है, तो ईमान का होना ये इस बात की दलील नहीं है कि लोग हमको फूलों के हार लाकर पहनाएंगे कि आपके ईमान का दर्जा ये था, अब माशाल्लाह ये हो गया है। ज्यादा इम्कान ये है कि इल्जाम ये कहकर लगेगा कि ये दीन से दूर हो गए हैं, दीन के दुश्मन हो गए हैं, दीन के हकीकी रहनुमाओं के दुश्मन हो गए हैं। अरे भाई ये क्यों हुआ, हमने तो ऐसा कोई काम अंजाम ही नहीं दिया कि जो फेरिस्त में देखा जाए तो ये पता चले कि हम दीन के दुश्मनों में से हो गए। फिर ये कैसी बात, तो पता चला कि नहीं, जो चीज साबित शुदा हो गई है सोसाइटी में उसके खिलाफ बोलना कुफ्र है। जो चीज सोसाइटी में साबित हो गई है उसके खिलाफ बोलना कुफ्र है, और जो चीज साबित नहीं हुई है उसकी तरफ बुलाना कुफ्र है। तो जब रसूल आए, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु का नारा बुलंद किया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और फला पा जाओ, तो रसूल ईमान वाले दिखे या कुफ्र, नूर की तरफ बुलाने वाले दिखे या जुलुमात की तरफ, किसकी तरफ, साबित शुदा चीजों की तरफ। अगर आप दलील तलब करें तो आप हो जाते हैं बेईमान, जबकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि बगैर दलील के कोई चीज की पैरवी मत करो। तो ताकि दोबारा जिंदगी का सिलसिला दिया जा सके उन लोगों को जो मक्के और मक्के के अतराफ हैं, रसूल को महबूस किया गया, भेजा गया, और रसूल ने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। आप इब्राहिम के बारे में देख लीजिए, इब्राहिम भी जाते हैं तो सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं ताकि लोगों को सोचने की आदत दिलाए, और जैसे इंसान का जहन सोचने लगता है बगैर किसी गरज को मद्देनजर रखते हुए, अल्लाह का रास्ता उसको वाज़ेह तौर पर नजर आया। इसलिए अनपढ़ मामूली जाहिल लोगों ने भी ईमान लाया उस वक्त जबकि उनको ईमान लाने से कोई चीज मिलने वाली नहीं थी, इफ्तार में कोई हलीम नहीं खिला रहा था, बावजूद उसके ईमान लाने के नतीजे में बदतरीन तरीकों से उन पर जुल्म किया जाता था, धूप में लिटाकर उनके पीठ पर गर्म पत्थर रख दिया जाता था। क्या थे वो लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। बिलाल क्या थे, गुलाम थे, सिया गुलाम थे, यानी सोसाइटी के सबसे नीचे वाले तबके को रिप्रेजेंट करने वाले थे। ईमान कैसे ले आए, और ऐसा ईमान ले आए कि जो है जितना टॉर्चर किया जा रहा है उतना उनका ईमान बढ़ता जा रहा, ये कौन सा कॉज एंड इफेक्ट नजर आया उनको। तो जो एक अनपढ़ जाहिल बिलाल उस दौर में समझ सकता था हमारी रूहे उन पर फिदा, आज हम उसको समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, पहले प्रेशर पे हम पहले बैकआउट हो जाते हैं, अरे भाई ये कहां से लगा लो, और रोते उनके ऊपर है कि जिन्होंने हर किस्म की मुश्किल बर्दाश्त की। हम शहादत हजरत अली का सिलसिला इन अय्याम में मनाते हैं, वो चीज क्या थी कि जो कुछ लोगों को उनका इतना गिरविता बना दिया और कुछ लोगों को इतना बड़ा दुश्मन, वो क्या चीज, कुछ जो उन पर जान देने को तैयार थे और कुछ जो उनकी जान लेने पर आमादा थे और ले चुके। फर्क यही था कि जो उन पर जान देने को तैयार थे उन्होंने वो कॉज और इफेक्ट का, वो सबब और मुसबब का, वो इल्लत और नतीजे का रीजन और लिंक देख लिया था। जहां पर अल्लाह के रास्ते को समझने के बाद पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा, मोमिन अपनी जगह से नहीं है, तो वो लोग थे। नतीजा भी भुगता उन्होंने, बादस अली उनको चुन चुन कर मारा गया, बेहतरीन आला तरीन इबादत करने वाले नेक और शरीफ हजरात किसी को बख्शा नहीं गया। दुनिया के दस्तूर अलग होते हैं मगर दुनिया में अल्लाह के लिए जीने के दस्तूर अलग, हमारे पर चॉइस है, इम्मा काफिर हो व इम्मा शकूरा, कुफ्र करो उस रास्ते का कि जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है, नतीजे में तुम हर जगह अपने इंसान होने को ठुकराते जाओगे, रद्द करते जाओगे। आखिरी में इस हालत तरीके की हालत हो जाएगी कि तुम एक जीफा बन जाओगे, मुर्दा जिस्म के जिसकी खाल भी काबिल इस्तेफादा नहीं होगी। बरखिलाफ इसके अगर तुमने वो रास्ता तय कर लिया, मुश्किल ही सही, और ईमानी रास्तों को समझकर उस पर आगे बढ़ने लगे तो तुम्हें बदन के छोड़ने की ख्वाहिश हो जाएगी, बदन को पकड़ने की ख्वाहिश बाकी नहीं रहे। बदन एक चीज है जिसके जरिए से अल्लाह ने हमको उसका सफर तय करने का आला बनाया है, वसीला बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया। वो अपने आप में कोई चीज नहीं है। जब तक उस रास्ते में जो अल्लाह के तरफ जाने वाला है उसमें मदद और उम्मीद और मददगार हो रही है तब तक उसकी वैल्यू है, लेकिन जब अल्लाह तक पहुंच जाए उसका छूट जाना ही मुनासिब है। इसी बुनियाद पर चाहे वो किसी शहीद की हरकत को देख लीजिए, उसने अपने जिस्म को अहमियत नहीं दी, चाहे उस दौर का हो या इस दौर, चाहे उस दौर का हो या इस दौर का, उसको बदन एक वसीला नजर आया, एक आला नजर आया, एक इंस्ट्रूमेंट नजर आया। बदन को महबरियत न देना, सेंट्रलिटी न देना, मरकजियत न देना, ये ईमान की पहली निशानी है। बदन हमेशा आला नजर आएगा। अब जब बदन उसके तकाजे शुरू करेगा तो आप इतना ही देखेंगे कि उसको कितनी जरूरत है। हथौड़ी को आप कैसे मेंटेन करेंगे, उतना ही अच्छा मेंटेन करेंगे कि जहां पर कीला ठोकते वक्त आपको साथ दे, कोशिश करेंगे कि उसको जंग ना लगने पाए, है या नहीं है। और आपके दूसरे आलात को कीजिए, टेलीफोन आजकल हम यूज कर रहे हैं, आप यकीनन उसको पानी से दूर रखेंगे क्योंकि पानी उसको लग जाएगा तो उसकी फंक्शन खराब हो जाएगा, डेड हो जाएगा। लेकिन आप उसको आला समझेंगे, उसकी जो इफादियत है उसके मुताबिक आप उसकी हिफाजत करेंगे। बदन की भी जरूरत है हिफाजत की। लातुर्कु बेहदी को मिलत है लोगा, तुम अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डालो, ये है कि तुम्हारे आले को मामूली मत समझो। आला काम का है मगर आला है, आला काम का है मगर आला है। तो जब आले वाली कैफियत हो जाएगी तो फिर कुछ बात ही नहीं रही, ना इतराने की गुंजाइश बाकी रही, ना करने की गुंजाइश बाकी रही, क्योंकि आले को लेके क्या अकड़े, नतीजे को जो आले से हासिल किया उस पर अकड़ ले तो भी बात है या नहीं है। हमको आदत ये हो गई है कि दुनिया तमाम में हमको बताया जा रहा है कि आले जो है ना ये बहुत अच्छे, क्योंकि आपको जाना है नहीं कहीं, आला बन गया मकसद, इंस्ट्रूमेंट हो गया मकसद, आप जितना इंस्ट्रूमेंट को चमका लो कोई ये नहीं पूछता ये इंस्ट्रूमेंट का काम खाली चमकाना है, अगर चमकाना है तो 10 साल के बाद इसकी रौनक खत्म क्यों नहीं हो जाती है? जब बनना था तो 70-80-90 साल तक भी इसकी चमक धमक बाकी रहना है ना, 30 साल के बाद तो प्लास्टिक सर्जन के पास जाने की जरूरत होती है, हर चीज ढीली हो पड़ जाती है या नहीं है। तो ये कैसा आला के जिसकी पूजा की जा रही हो, जिसकी इबादत की जा रही हो, कि जो 18-19-20 साल के बाद ढलना हल्के हल्के शुरू हो जाता है। साइंस के अंदर अगर आप जाकर देखें 18 साल की उम्र के बाद बदन में फ्रैक्शनल तौर पर, निस्बी तौर पर कमी होना शुरू होता है, बहुत ही हल्के हल्के 30 तक पहुंचेंगे जरा स्पीड पकड़ लेंगे, 40 तक पहुंचेंगे स्पीड जो हमने ख्वाब में नहीं देखा था वो शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये बदन तो अपने जाने का ऐलान करना 18-19 साल के बाद हल्के हल्के शुरू कर दिया, ठीक। 40 साल तक आने के बाद जो है स्पीड और बढ़ जाती है, 60 तक पहुंचे अगर तो फांसी का जो शस्त आमद निशस्त आमद पे दीवार, 60 साल के जब हो जाते हैं तो दीवार को टेका लेकर बैठना पड़ता है। हमारे जमाने में 40 और भी कुछ कम करो। तो ये आले को जो अपनी जिंदगी का मकसद है बना रखे, और जितने आप यूज के चैनल देखिए ये पूरे आलों को देख रहे हैं जिसका मकसद उनको खुद नहीं मालूम, और हम उनको देख देख कर खुश हो रहे हैं, अरे क्या आला है। अपने को फायदा क्या होने वाला है उस आले का, किसी को आला निवाला नजर आ रहा है तब तक कितने निवाले का? कितने बदहजमी होने तक। और ये आदत ऐसी है कि जितने खाते जाएंगे भूख और बढ़ती जाएगी, दुनिया के निवाले ऐसे होते हैं कि जिससे सैर आदमी नहीं होता। तो ये जो हमारे को जो है आज की इस्तेमाल में जो बोलते हैं आई कैंडीज ऑफर की जा रही है आंखों की ठंडक के लिए, अपनी औलाद को देख के वो सुकून हासिल नहीं हो रहा है जो इस किस्म की उड़ियान किस्म की चीजों को देखकर मिल रहा है इंसान। ये इंसान ईमान पर है या कुफर पर? कुरान कह रहा है कि दुआ करो कि मुझे मेरी अजवाज और जुर्रियत के जरिए आंखों की ठंडक मिले। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अय्युन, आगे का मरहला आगे, वज़अलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा, और मुझे मुत्तक़ीन का इमाम बना दे। ये क्या गज़ब की बात कर रहे हैं, ईमान पे टकने का काफी है, मुत्तक़ीन का इमाम बनूंगा कटपट जाऊंगा परेशानियों में डाल दे रहे अल्लाह मियां, आंखों की ठंडक भी कैसे तो भी ले लेता हूं। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? अल्लाह ने कहा बीवी बच्चों में आंखों की ठंडक, हमने कहा बहुत से जगह है और भी है और ईमान के ऊपर बाकी है। अब ऐसी हालत में हमको क्या मिलने वाला है दीन से? ऐसी हालत में हमको अल्लाह की इबादत से क्या मिलने वाला है? अल्लाह अगर चाहता है इबादत तो बिल्कुल उसके हो जाना। हमको दुआओं में भी जो मिलता है हबली कमाल इल्तिताई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम की जो दुआ है कि मुझे कामिल तौर पर तेरी तरफ हर चीज से काटकर मुतवज्जे करा दे ताकि तेरा नूर मेरे दिल की आंख को रोशन कर सके। कहां कहां पर आंखें नजर आ रही है? जिसको आंखें ये दो नजर आती है वो आंखों का सौदा करता है, जिसको दिल की आंख नजर आती है वो जिगर खून हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पर। वो दिल की आंख कहीं है, मानना है तो मान ले, नहीं मानना है तो ये दो आंखों के ऊपर काम चलाएं। ये दो आंखों से फकत कुफर मिलता है, ईमान नहीं मिलता, और दिल की आंख से ईमान मिलता है, कुफर की बात ही नहीं। वो आंख हमारी जब तक नहीं खुलेगी हम कुफर के दायरे में उसी हद तक गिरफ्तार रहेंगे जो जाहिरी तौर पर हम इल्जाम बुत परस्तों को लगाते हैं। फकत फर्क इतना ही होगा कि उनका बुत जाहिर ही होगा, हमारा बुत बातिनी होगा। बुत वही रहे और बातिनी बुत भी वही असर छोड़ता है जो जाहिरी बुत छोड़ता है, क्योंकि ये बुत से तो छुटकारा मिलता ही नहीं, जहां जहां लेते हैं उसको लेकर फिरते हैं। कोशिश की बात है, अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग जो हमारे रास्तों में कोशिश करते हैं यकीनन यकीनन उनको अपने रास्ते दिखा देते हैं। हर मरहला मरहला के अंदर एक एक रास्ता बनता है, लफ्ज जमा इस्तेमाल हुआ है सुबुल, उसका मतलब यह है कि रास्तों पर रास्ते बनते जाते हैं। आप यहाँ से यहाँ जाएंगे एक रास्ता रहेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे होगा उसके आगे फिर रास्ते, मरहला मरहला होगा। उसी बुनियाद पर इंसान के ईमान की तरक्की होगी, और जिस बुनियाद पर इंसान के ईमान की तरक्की होगी जब ईमान वाले मिल जाएंगे, जब ईमान वाले मिल जाएंगे और ईमान के नतीजे जाहिर होने लगेंगे, पहले एक छोटे से दायरे में और उससे बढ़ते बढ़ते अल्लाह की मर्जी तक। किसने सोचा था कि रसूल के एक जगह पर के जो सबसे कटी हुई जगह हो वादी गैर ज़र, जिसको कुरान कह रहा है कि ऐसी वादी कि जिसमें ज़राअत नहीं होती थी, वैसी जगह से आज भी हम मक्के को जाते हैं तो कटा हुआ नजर आता है सिवाय पहाड़ियों के, और किलोमीटरों ना किलोमीटर सिवाय कोई आबादी की गुंजाइश ही नहीं है। थोड़ा सा पानी जो मुयसर होता था वो यहाँ पर होता, किलोमीटर दर किलोमीटर कोई आबादी नहीं। तो आज के जमाने में जब आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से एवरेज वहां पर हरकत करते हैं तो आपको दूर दिखता है। उस जमाने में जब ऊंटों से हरकत करते थे तो 8 से 10-12 किलोमीटर की रफ्तार से आपको हरकत करना पड़ता था, रात में हरकत करना मुश्किल हो जाता था। ये सब चीजों के साथ आप देखिए कि फासले कैसे थे, और उस दौर में एक जनरेशन एक नस्ल के फासले से ईमान पूरी दौर पे फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। उस जमाने की मरो दुनिया कैसे फैला? कुछ तो हकीकत थी, तलवार से नहीं फैल सकता। मंगोल जैसा मैंने कहा कि मंगोलों ने काटते हुए पूरे एशिया को चले गए, क्या छोड़ा उन्होंने? एक जनरेशन में खुद मुसलमान हो गए, क्या छोड़ा उन्होंने? तबाही छोड़ी, दीन पर गलबा नहीं कर सके, ना ही कोई अपना दीन लाकर छोड़ सके। अगर ताकत के जरिए यही हासिल हो जाता तो अमेरिका जितना ताकतवर, उनके एक ही दुनिया में सुपर पावर है, तो वो भी अपना दीन ला कर सकता था। इस हद तक जरूर किया है जहां के ऊपर हमारी ख्वाहिशात को उभारने में बड़ा रोल अदा किया, और जिसमें हम भी शरीक हो गए, इसलिए कि हमारी भी ख्वाहिशात उसी रास्ते पर है। लेकिन जिस दिन हम ये सोच ले कि हमारी ख्वाहिशात उन रास्तों पर नहीं है जो आज के जमाने का कुफर हमको दिखा रहा है, तो हमारा रास्ता जुदा होगा, हमारा रास्ता खुदा वाला रास्ता होगा, और वो रास्ता हमारे लिए दुनिया में और आखिरत में एक अलग ही कायनात का सबब बने। ये दुनिया वो दुनिया बाकी नहीं रहेगी, वो आखिरत अलग ही होगी। अगर इस दुनिया में गुम होकर आखिरत को हम तलाश कर रहे हैं तो हमको आखिरत मिलने वाली है। हम आखिरत के होकर अगर आखिरत को तलाश कर रहे हैं तो हमको आखिरत मिलनी है। मन अरादल आखरा वसाला सा, मन जिसने इरादा कहा किया क़यामत में मरने के बाद, इस दुनिया में जिसने इरादा आखिरत का इस दुनिया में कर लिया, आखिरत को इस दुनिया में ढूंढने लगा, काम जरा मुश्किल है। साथ मिलके चलने पर आसान हो जाता है, काम मुश्किल है, साथ मिलके चलने पर आसान हो जाता है। और कुरान की जो छोटा सा सूरा है जो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्रिल इंसान लफी खुस्र, यकीनन असर की कसम तमाम इंसान खसारे और नुकसान में, सिवाय इल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात, ईमान लाए और अच्छे अमल अंजाम दें, वतवासों बिलहक वतवासों बिस्सब्र, जो एक दूसरे को वसीयत करेंगे हक की और सब्र की, ये मिलजुल के अल्लाह के रास्ते पर ईमान रखकर अच्छे आमाल करने वाली जो कैफियत है, ये कसौटी है इंसान के ईमान को बाकी रखने के लिए। और आपस में अगर मिलेंगे नहीं तो ईमान बाकी नहीं रहेगा। अकेले को वह आसानी शैतान शिकार कर लेता है, लेकिन जब मिलजुल के कोई काम करता है तो शैतान उसे आसानी से पकड़ नहीं सकता। मोमिनीन आपस में अमर बिल मारूफ नहीं है नल मुनकर करते हुए एक एक कदम करते हुए आगे बढ़े और दूसरी कौमों में भी ईमान को पहचानने की कोशिश करें, दूसरी कौमों को रद्द नहीं करते, अरे ये तो वो है, ये कोई वो नहीं होता, सब इंसान अल्लाह के बंदे हैं और सब में ईमान की रोशनी है, उनमें अल्लाह की फितरत है। उस फितरत को बगैर हमारे तरीकों को अफजल समझ के, उनके तरीकों को गिरा हुआ समझ के अगर हम अप्रोच करेंगे तो हम इला कलिमतिन सवा हो जाएंगे। आ जाओ एक कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे में कॉमन है, सवा है कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराएंगे। ये अगर बुनियादों पर हरकत करने को तैयार हैं और लोगों में फिरकों की बुनियाद पर नहीं, मोहब्बतों की बुनियाद पर और अल्लाह के रास्ते को आगे बढ़ाने की बुनियाद पर अगर आगे बढ़ें, ना फकत ये सोचते हुए कि हम शिया हैं वो सुन्नी हैं, वो सुन्नी हैं हम शिया हैं, वो हिंदू हैं मुसलमान हैं वो क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं वो हिंदू हैं वो क्रिश्चियन हैं, ये सब झगड़ों से अपने आप को बुलंद कर इंसानियत की तलाश और उन उसूलों को जो ईमान और अच्छे अमल वाला है उसकी तरफ अगर हम गौर करें तो शायद ये दुनिया में पहली हरकत हयात की तरफ आएगी। वरना ये दुनिया आज के दौर में कम से कम मौत की तरफ तेजी से बढ़ रही है, मगर उसकी मर्जी वो किस तरीके से इसको दोबारा हयात की तरफ लाएगा। लेकिन हमको अगर अपना रोल अंजाम देना है तो हम सब मिलकर जहां तक भी हो सके अपने ईमान के रास्तों को समझे, अपने रूह के रास्तों को समझे और बदन को वसीला समझते हुए, आला समझते हुए, इंस्ट्रूमेंट समझते हुए उसको काम में लाएं और बगैर गुरूर और तकब्बुर के इस रास्ते को आगे बढ़ाएं। और इंशाअल्लाह से दुआ करें कि इस रास्ते पर हमको कामयाबी अता फरमाएं और इंशाअल्लाह दुनिया को उस चीज की तरफ ले जाए कि इंशाअल्लाह जो दुनिया उस तरफ पहुंचेगी। इन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून, ये वादा पूरा होगा और यकीनन उसको पूरा करने वाले ईमान वाले होंगे और अच्छे अमल करने वाले होंगे। अल्लाह हमको उनमें शामिल करे और हमारा सबका खातिमा खैर और ईमान पर करे। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
आले सबा।